पृष्ठ संख्या 72, 6, रामधारी सिंह दिनकर, 1908 ईस्वी से 1974 ईस्वी। उत्तर छायावादी कवियों में राष्ट्रकवि दिनकर का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी गणना छायावाद उत्तर की वराहत्रयी दिनकर वच्चन और नरेंद्र शर्मा के रूप में की जाती है। हिंदी कविता को छायावाद की असीम और अज्ञात की अमूर्त धारा से मुक्त कर उन्होंने उसे ओजपूर्ण यथार्थ स्वच्छंदतावाद के धरातल पर प्रतिष्ठित किया। वे अपने समकालीन सभी कवियों में सर्वाधिक राष्ट्रवादी कवि हैं। उनकी कविताएं पाठक को छायावाद के रहस्यमय परिलोक से निकालकर गांव और कस्बों की मिट्टी की ओर ले जाती है। उनके काव्य के सौंदर्य अभिधानों में देश की मिट्टी की खुशबू विद्यमान है। दिनकर एक ऐसे कवि हैं जो एक ही साथ ओज और प्रेम के कवि हैं। उपनिवेशवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद का उग्र विरोध तथा उसके कारण सामान्य मनुष्य के जीवन की घोर विपन्नता का चित्रण उनकी रचनाओं का मूल स्वर है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता और विश्व मैत्री के साथ ही साथ राष्ट्र विरोधी शक्तियों के विरुद्ध आक्रोश, सभी के लिए समता और समान अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल, अहिंसा के साथ युद्ध की अनिवार्यता दिनकर काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले अब बेगूसराय के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। मैट्रिक में पूरे प्रांत में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बाद पटना कॉलेज से बीए तथा भागलपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य से सब रजिस्ट्रार, भारत के जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक, मुजफ्फरपुर स्नातकोत्तर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार तथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य आदि विभिन्न पदों पर काम करते हुए दिनकर ने अपनी काव्य प्रतिभा के साथ ही साथ प्रशासनिक योग्यता का भी परिचय दिया। इस बीच दिनकर की काव्य यात्रा निरंतर जारी रही। 1961 ईस्वी में उनका बहुचर्चित काव्य उर्वशी प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी के चिंतकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस कृति पर 1 दिसंबर 1973 ईस्वी को उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके पूर्व प्रकाशित संस्कृति के चार अध्याय 1956 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका था। पृष्ठ संख्या 73। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 40 वर्षों से भी अधिक समय तक अपनी काव्य यात्रा तय करते हुए 24 अप्रैल 1974 को कवि दिनकर इस पार्थिव क्षितिज से सदा के लिए अस्त हो गए। दिनकर वस्तुतः ओज और प्रेम के कवि हैं। हुंकार में जहाँ उनकी वीर भावों की व्यंजना हुई है, वहीं रसवंती में कोमल तथा उद्यम श्रृंगारी भावों की। पराधीनता के दिनों में राष्ट्रीय देशभक्त की रचनाएं करने के कारण वह राष्ट्र कवि कहलाए। दिनकर की प्रारंभिक रचनाएं छात्र सहोदर, विश्वामित्र, नारायण सरोज, सेनापति जैसी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। अपनी पहली कविता के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा, मेरी पहली कविता सन 1924 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित होने वाले पाक्षिक पत्र छात्र सहोदर में छपी थी, जिसके संपादक श्री नरसिंह दास थे। उसके बाद मेरी बहुत सी कविताएं कलकत्ता से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र सेनापति और विश्वामित्र में तथा नारायण और सरोज में छपी। पटना से निकलने वाले पत्र देश और महावीर में भी मेरी आरंभिक रचनाएं छपी थी। इन्वर्टेड कॉमा बंद। काव्य सृजन के क्षेत्र में दिनकर ने द्विवेदी युग और छायावाद युग के बीच का रास्ता अपनाया था। उनके अनुसार इन्वर्टेड कॉमा, मेरी वेदना अभिव्यक्ति की वेदना थी और मेरे सम्मुख जो चुनाव था वह क्लासिक और रोमांटिक तथा द्विवेदी युग और छायावादी काल या मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत के बीच का। अनुभूति और भाव तो कुछ छायावादियों के ही अच्छे लगते थे, किंतु अभिव्यक्ति की सफाई में वह चाहता था जो मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी में निखरी थी। मैं दोनों से हटकर अपने लिए कोई ऐसी राह निकालना चाहता था जो दोनों से समीप और दोनों से दूर हो। इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस प्रकार दिनकर ने अपनी काव्य भूमि के लिए एक नए रास्ते का अन्वेषण किया जो उनके मन और मिजाज के अनुरूप था। दिनकर कविता को हृदय की वस्तु मानते थे, ना कि मस्तिष्क की। आवेग और आनंद ही कविता के प्राण हैं। इनके ना रहने पर कविता निर्जीव हो जाती है। इसी अर्थ में वह कविता को विज्ञान से भी अलग मानते थे। सीपी और शंख की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन्वर्टेड कामा कविता विज्ञान का प्रतिलोम है। जो चीज़ विज्ञान है वह कविता नहीं हो सकती और जो चीज़ कविता है वह विज्ञान नहीं, इन्वर्टेड कॉमा बंद। उनके अनुसार कविता वह है जो हमें आंदोलित कर आवेश में आने को विवश कर दे, जिसका आख्यान कोरे तर्कों से ना होकर अनुभूति की झिलमिल सहजता से हो। इसी आधार पर उन्होंने कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी पृष्ठ संख्या 74 जैसे ऐतिहासिक आख्यानों के चरित्रों और संवादों में युगानुरूप रद्दो बदल कर उसे संसार के समक्ष प्रस्तुत किया। रश्मिरथी में कर्ण के चरित्र के माध्यम से उन्होंने कुल और जाति के झूठे अहंकार पर चोट की है, तो कुरुक्षेत्र में महायुद्ध की विभीषिका की व्यर्थता को अत्यंत मार्मिकता के साथ दर्शाया। उनकी अन्य अन्य कृतियों में भी ऐसा ही कोई ना कोई संदेश छिपा हुआ है। काव्य कृतियाँ कवि दिनकर की काव्य कृतियों में प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा तथा हरि को हरिनाम प्रमुख हैं। उक्त में प्राणभंग, कुरुक्षेत्र तथा रश्मिरथी दिनकर के सर्गबद्ध खंड काव्य हैं, जबकि उर्वशी एक नाट्य महाकाव्य है। रेणुका, हुंकार, सामधेनी तथा इतिहास के आंसू उनके काव्य संग्रह हैं, तो द्वंद्व गीत में रुबाइयां हैं। इसके अलावा नीम के पत्ते व्यंग्य काव्य तथा आत्मा की आंखें अंग्रेजी की कुछ अनूदित कविताओं का संकलन है। खा गद्य कृतियाँ कवि दिनकर ने काव्य के अतिरिक्त निबंध, समीक्षा, इतिहास एवं संस्कृत यात्रा वृत्तांत, संस्मरण तथा डायरी आदि विधाओं पर भी सअधिकार लेखनी चलाई है। उनकी गद्य कृतियों में संस्कृति के 4 अध्याय, इतिहास ग्रंथ, धूप छां, सूरज का ब्याह, कवि और कविता, चिंतन के आयाम, संस्कृत भाषा और राष्ट्र, कविता और शुद्ध कविता निबंध, काव्य की भूमिका, मिट्टी की ओर, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, साहित्य और समाज, श्री अरविंद मेरी दृष्टि में, साहित्य आलोचन, संस्मरण आंजलि, व्यक्तिगत निबंध और डायरी, पंडित नेहरू और अन्य महापुरुष, संस्मरण तथा उजली आग, बोध कथाएं आदि प्रमुख हैं। दिनकर और उर्वशी उर्वशी 1961 में प्रकाशित राष्ट्रकवि दिनकर का एक महत्वाकांक्षी महाकाव्य है, जिसमें दिनकर की काव्य प्रतिभा का चरम निदर्शन देखने को मिलता है। इसका कथानक कालिदास के प्रसिद्ध नाटक विक्रमोवर्षीयम पर आधारित है, जिसमें कुल 5 अंक हैं, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण आधुनिक बोध से अनुप्राणित है। पुररवा के प्रेम निवेदन के संदर्भ में उर्वशी ने जो उत्तर दिया है वह भावना से युक्त होने के बावजूद आज की जागरूक नारी का स्वर है। इस वृत्ति में कवि ने उर्वशी के साथ पुररुआ के चरित्र में प्रेम और वीरता की औदात्यपूर्ण सृष्टि की है। पृष्ठ संख्या 75 काम और अध्यात्म की समस्या इस काव्य की मूल समस्या है। 20वीं सदी के महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने सभ्यता के आईने से काम को जिस रूप में देखा, उर्वशी उसी की भावपरक व्याख्या है। ईश्वर और प्रकृति, इन दोनों के बीच ना तो कोई प्रतियोगिता है ना ही कोई विरोधाभास। काम पाप नहीं, विधाता का अमर विधान है। काम तब पाप होता है जब वह मन को वश में कर शरीर को हाँकने लगता है। तन का काम अमृत है, लेकिन मन का काम गरल। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती है, काम के अनेक स्तर खुलते जाते हैं। वास्तव में उर्वशी प्राचीन नैतिक मूल्यों को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने वाला अतुलनीय महाकाव्य है। दिनकर ने उर्वशी के संदर्भ में लिखा था कि इन्वर्टेड कॉमा यह काव्य जिस रूप में लिखा गया उससे अधिक सुंदर रूप में लिखना उनके लिए संभव नहीं था, इन्वर्टेड कॉमा बंद। दिनकर का मानना था कि इन्वर्टेड कॉमा पुररुआ और उर्वशी का प्रेम मात्र शरीर के धरातल पर नहीं रुकता, वह शरीर से जन्म लेकर मन और प्राण के गहन गुह्य लोकों में प्रवेश करता है। रस के भौतिक आधार से उठकर रहस्य और आत्मा के अंतरिक्ष में विचरण करता है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। हिंदी जगत में इस ग्रंथ की अनुशंसा और आलोचना दोनों खूब हुई और लंबे समय तक यह समीक्षकों के बीच चर्चित रही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके तीसरे अंग को इस ग्रंथ की काव्य की आत्मा कहा है तथा इसे कवि की विराट कल्पना शक्ति, समूर्तन कौशल और समाहित चित्त की समृद्धि का प्रमाण माना है। उनके अनुसार यूनाइटेड कॉमा उर्वशी दिनकर की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ समझी जाएगी। वह कवि के अंतर जगत के निगूढ़ चिंतन के मंथन से निकला हुआ नवनीत है। इनवर्टेड कॉमा बंद। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसका मूल प्रतिपाद्य काम या प्रेम माना है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि इनवर्टेड कॉमा उर्वशी उनकी काव्य क्षमता की सही निष्पत्ति है, जिसमें महाकाव्य और नाटक की उदात्तता को एक साथ मिलाया गया है। इनवर्टेड कॉमा बंद। इसमें प्रेम को एक आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचाया गया है। मुक्तिबोध ने कामायनी की ही तरह उर्वशी को भी एक कृत्रिम और असफल रचना करार दिया है, तथापि भाषा शैली, बिंब प्रतीक, कल्पना प्रवणता, शब्द वैभव, छंद नियोजन, गीतात्मकता, चित्रात्मकता, अलंकारिकता, रस सृष्टि आदि सभी दृष्टियों से उर्वशी हिंदी की एक अद्वितीय कृति है, इसमें संदेह नहीं।